धवला पुस्तक दूसरी लेक्चर नंबर 13।
ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम शुद्धात्मने नमो अरिहंतानं नमो सीतानं नमो आयरियाणं
नमो वैछायाणं
नमो लोहे सौवशाऊनं सिद्धमनंतमणिरिय मनुव मम पत्थसोक्कमणवच्चम् केवल पहोहनिचिय दुन्नयतिभिरंजिनम् नमः।
आचार्य श्री वीरसेन स्वामी रचित यह धवला नामक टीका है, जो षटखंडागम ग्रंथ पर लिखी हुई है, जिसके कर्ता है पुष्पदंत और भूतबली आचार्य। इस षटखंडागम का जो प्रथम खंड है जीवस्थान, उसमें सत प्ररूपना में दूसरी पुस्तक चल रही है और पृष्ठ संख्या है 566 अंतिम लाइन। यह हम देवों में आलाप देख रहे थे और उसमें भी जो विशेष भेद है उनके, भवनत्री की बात अलग देखी, फिर सौधर्म ईशान की देखी, शतार सहस्रार की देखी, आनत प्राणत आदि ग्रहवेग तक की देखी। अब अंतिम लाइन, अब कौन बच गए? हाँ सुनी बे, अभी कौन रह गए देव? अनुदिश और अनुत्तर, उनके नाम यहाँ बता रहे, देखो पढ़ेंगे। 566 में 566 अंतिम लाइन, अर्ची अर्ची मालिनी वज्र वैरोचन सौम्य सौम्य रूप अंक स्फटिक आदित्य, इन 9 अनुदिश विमानों के उनके नाम बताए हैं, तथा विजय वैजयंत जयंत अपराजित और सर्वार्थ सिद्धि, इन 5 अनुत्तर विमानों के आलाप कहने पर, इसके ऊपर कोई नहीं, उसको अनुत्तर कह देते हैं। तभी उनमें गुणस्थान कौन है? वहां तो सारे समय दृष्टि ही उत्पन्न होते और मुनिराज ही जाएंगे वहां पर, यहाँ से मनुष्य के मरकर वहां जाएंगे तो सारे चौथे गुणस्थान वाले, एक अविरत समय दृष्टि गुणस्थान, संगी पर्याप्त और संगी अपर्याप्त, क्योंकि जब तक शरीर पर्याप्ति नहीं पूरी होती तब तक विग्रह गति में और वहां पर अपर्याप्त अवस्था कहेंगे उनकी। तो 2 जीव समास, 6 पर्याप्तियां 6 अपर्याप्तियां, 10 प्राण 7 प्राण, 4 संज्ञाएं, देव गति, ग के ऊपर बिंदी नहीं चाहिए, देव गति, पंचेंद्रिय जाति, त्रस्य काय, 4 मनोयोग, 4 वचन योग, वैकृत काय योग, वैकृत मिश्र काय योग और कारमान काय योग, पर्याप्त अपर्याप्त दोनों के मिलकर बताएं, 11 योग, पुरुष वेद। तो हमने पुरुष वेद कहाँ से देखे थे, कौन से देवों से, याद है? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। यानी सौधर्म ईशान तक ही देवियाँ उत्पन्न होती है, ऊपर के देवों की देवियाँ कहलाती है, मगर वो वहाँ आके ले जाते हैं तो वो सौधर्म ईशान की कहलाएगी, ऊपर कोई देवी उत्पन्न नहीं होती, इसलिए वो सारी नीचे में, उसके जो हमने आलाप देखा उसमें देखा, ऊपर सभी पुरुष वेद कहना। 4 कषाय है ना, देखो आगे, आदि के 3 ज्ञान, क्योंकि ये सब समय दृष्टि है इसलिए 3 ज्ञान, मति श्रुता उदित, असंयम, आदि के 3 दर्शन, द्रव्य से अपर्याप्त काल में कापोत और शुक्ल लेशाएं, विग्रह गति में शुक्ल लेशा होती है शरीर का वर्ण, और वहां पहुंचने पर शरीर पर्याप्ति पूरी नहीं होती तब तक कापोत लेशा, पर्याप्त काल में उत्कृष्ट शुक्ल लेशा, ये शरीर का वर्ण है, और भाव से पर्याप्त हो या अपर्याप्त हो, उत्कृष्ट शुक्लेशा भव्य सिद्धि औपशमिक क्षायिक और क्षायोपशमिक, ये तीन सम्यक तो कोई क्षायोपशमिक के साथ ही उत्पन्न हो सकता है। औपशमिक में द्वितीयोपशम के साथ लेना, प्रथमोपशम तो सवाल ही नहीं है, वो तो मिथ्या दृष्टि के होता है, ये तो सारे सम्यक दृष्टि है। संगीत आहारक अनाहारक साकार उपयोगी और अनाकार उपयोगी होते हैं। आप पर्याप्त हम के आलाप लगाएंगे
जीव समाज सब्जी पर्याप्त, गुणस्थान चौथा जीव समाज संज्ञा पर्याप्त, पर्याप्तिया छः प्राण दस संज्ञा चार प्राण दस संज्ञा चारों गति देव गति इंद्रिय पंचेंद्रिय काश काय त्रस काय योग नौ चार मन के चार वचन के और वैक्रियक का योग वेद पुरुष वेद कषाय चार ज्ञान तीन सु ज्ञान संयम असंयम दर्शन तीन दर्शन लेसिया दो लेसिया नहीं शुक्ल लेसिया खाली शुक्ल लेसिया भव्य सम्यक तो तीनों और सॉरी नहीं 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 साहेब समिक और साइक दो ही पर्याप्ति पूरी होने के पहले द्वितीय संपक दो ही सम्यक तो वेदक हो जाएगा पर्याप्त
तो
संगी जीव आहार और साकार उपयोग और अनाकार उपयोग
ऐसा रख कर नहीं पढ़ सकते।
प्रश्न है समय दृष्टि के प्रति मनुष्यों से की देव की कोई विशेषता नहीं है, यदि कहा जाए यदि ऐसा शंका का पूछता है कि वेद समय जो थी देव होगा अंग्रेज वाला या मनुष्य होगा उसमें क्या डिफरेंस है, अतः वह मनुष्यों के समान अनुदिशार अनुत्तर विमानवासी देवों में दर्शन होने से उत्समन करने के योग्य परिणाम नियम से होना चाहिए तो भी कहना युक्ति संगत नहीं है, क्योंकि संयम को धारण करने की तथा उत्तम श्रेणी के समारोहण आदि की योग्यता मनुष्यों के ही होने के कारण अनुदिष्ट और हुआ और अनुत्तर विमानवासी देवों में और मनुष्यों में भेद देखा जाता है। तो मनुष्यों की बात अलग है, उनमें क्या क्या प्राप्ति हो सकती है, संयम प्राप्त करके श्रेणी भी बन सकती है। और यह उत्तम की बात है, इसलिए उत्तम श्रेणी की बात है तथा उत्तम श्रेणी में मरण करके औक्षणिक समय को से सात देवों में उत्पन्न होने वाले जीव, अभी यह जीव दुख मरा औक्षणिक समय को से सात छह पर्याप्तियों को पूर्ण नहीं कर पाए, छह पर्याप्तियों को करने इतना उसका द्वितीय औक्षण इतने लंबे काल तक नहीं टिकेगा, ये उसका यानी उससे पहले पहले वो वेदक हो जाए क्या ना, ये क्या कहना चाहिए उसका अर्थ हमें भाषित होना चाहिए, नहीं पूर्ण पाते तो क्या पहले मरते हैं, उसकी बात नहीं है, पहले उनका समय को वेदक हो जाता है, क्योंकि वहाँ अपरिमित अवस्था में होने वाले।
मेरा ये प्रश्न है कि जो द्वितीय उपशम सम्यक उपशम श्रेणी चढ़ रहे हैं और मान लो कि वो उपशम श्रेणी का काल बहुत बड़ा है, नवे या आठवें गुणस्थान के दूसरे भाग में उसका मरण हुआ और एक्चुअली वो नौ दस ग्यारह नीचे आठ तक आ सकता है, यानी टाइम बहुत बाकी है और वह जीव का मरण होकर वो देवगति में चला गया, अब यहाँ जहाँ हम देख रहे हैं तो उसका वो टाइम कम हो जाएगा औक्षमिक सम्यक्त्व का, क्योंकि जब तक छह पर्याप्ति पूरी नहीं होती उसके पहले वो शोभक्षम में आ जाता है, इसका अर्थ ये हो गया कि छह पर्याप्ति का काल
तो
बड़ा है,
है।
यानी औक्षमिक का काल खत्म नहीं होएगा क्योंकि वो मर गया तो चौथे गुणस्थान में जाएगा ना, तो उसका काल में कुछ कटौती होती है या ये छह पर्याप्ति का काल बड़ा है, दोनों में से कौन सा?
नहीं नहीं नहीं, छह पर्याप्ति का काल बड़ा है ना यहाँ पर, ये पहले भाग में मरण नहीं आते थे, दूसरे भाग में कहीं पर भी मरण हो सकता
तो छह पर्याप्ति नहीं, दो पर्याप्ति का काल भी बड़ा होगा क्योंकि हम लोग शरीर पर्याप्ति के बाद ही पर्याप्त।
यहाँ देखो, यहाँ तो छह की बात उठाइए, वहाँ पर्याप्त अवस्था में होने वाले औक्षणिक सम्यक्त्व के काल से छह पर्याप्तियों के पूर्ण होने का काल अधिक पाया जाता है, इसलिए यह बात सिद्ध हुई अनुदिश और अनुत्तर विमानवासी देवों के पर्याप्त काल में औक्षणिक सम्यक्त्व तो नहीं होता। पर्याप्त काल में यहाँ तो निवृत्त या पर्याप्त की अपेक्षा है, पर्याप्त अपर्याप्त कहते हैं, नहीं तो उसका अलग नाम देते हैं। अपर्याप्त जो जीव समान बता रहे यहाँ पर वो किस अपेक्षा से निवृत्त या पर्याप्त से, यानी अपर्याप्त काल में ही होता है, यानी वो शरीर पर्याप्ति के पहले पहले वो नियम से शोषण सम्यक्त्व हो जाता है। विशेषार्थ इसी को खोल के बता रहे, देखो प्रथम ऑप्शन सम्यक्त्व की प्राप्ति मिथ्या तो पूर्वक होती है ऐसा आगम वचन है, और अनुदिश तथा अनुत्तर विमानवासी देव मिथ्या दृष्टि होते नहीं, इसलिए वहाँ प्रथमोपशम की प्राप्ति तो संभव नहीं है। अब रही द्वितीयोपशम सम्यक्त्व की बात, तो यह वेदक सम्यक्त्व से उपशम श्रेणी के सम्मुख हुए मनुष्यों के ही संभव है, अन्य गतियों में नहीं, और वो भी सातवें गुणस्थान वाला वो करता है उसको द्वितीयोपशम, तथा पूर्व पर्याय से आया हुआ द्वितीयोपशम सम्यक्त्व पूर्व पर्याय है मनुष्य से आए, जो मुनिराज जो है वो द्वितीयोक्षम करने के बाद द्वितीयोक्षम के ही काल में मर गए और देव में उत्पन्न हुए, इसको कहेंगे पूर्व पर्याय से आया हुआ। पर्याय ने मनुष्य भोग द्वितीयोक्षम सम्यक अपर्याप्त अवस्था में ही समाप्त हो जाता है, क्योंकि इसके काल से छह पर्याप्तियों के पूरा करने का काल अधिक होता है। यहाँ तो छह, क्योंकि ओरिजिनल में छह बताया इसलिए छह की बात यहाँ उठाई, दो लेना पड़ेगा एक्चुअली, फिर भी यहाँ तो दो लेना पड़ेगा कहते हैं, क्योंकि अपर्याप्त तब तक ही कहेंगे, बाद में उसको पर्याप्त कह देते हैं। तो नहीं तो वो तो पर्याप्त अवस्था में उसको लेना पड़ता।
अश्विन भाई ने जो बात बताई कि शरीर पर्याप्ति तक का जो काल है वह भी बड़ा है। छह पर्याप्ति का सवाल ही नहीं, दो पर्याप्ति में ही वो,
फिर भी ओरिजिनल में उन्होंने छह लिखा है इसलिए वो छह पर्याप्ति का काल हम कहेंगे। परंतु कर्मकांड वगैरह में भी हम जो देखते हैं ना वहाँ पर कितनी सत्ता है, कितने क्या है, कितने का उदय है, कितने का बंद है, उसकी बात आती है, उसके अनुसार हम इसको डिराइव कर सकते हैं। अपना हुआ है वहाँ पर कौन सा बंद है तो कौन सा उदय है वगैरह वगैरह हम देखिए, हम कर्मकांड में बहुत विस्तार से देखा है। हाँ काल के भी अल्प बहुत में देखे थे हमने। इस प्रकार इतने कथन से यह निष्कर्ष निकला, नौ अनुदिश और पांच अनुत्तरों में मिथ्यात्व की प्राप्ति तो किसी प्रकार संभव नहीं। एक मिनट, जो यहाँ फुटनोट में कुछ विशेष है क्या, लब्धिसार क्षपणासार में कुछ है, दो नंबर का पाठ देखना, वो सम सम्मत तद्धा छावली मेत्तो दु समय मेत्तोक्ति अवसिथे आसाणो अन अन्न दरु दयो दो होदी अंतो मुहूर्त मध्यम सवोम समेन होदी वसंतो तेन परम उदवो खलु किन्ने कदरस्य कम्मस्य। लब्धिसार में देखना पड़ेगा, यानी ये तो ये कहते उपशम सम्यक में से छह आवली या एक समय काल बाकी है, तब अवसिथे आसाणो अन अन्न यानी अनंतानुबंधी के उदय दो होदी अंत मुहूर्त मध्यम सर्व समय होदी संत, यानी तब तक वो उपशमित रहते बाद में उसका उदय होता है तीन में से एक का, ये यहाँ लागू नहीं हो रहा है। उपशम समय दृष्टि का क्या होता है ऑर्डिनरीली उसकी बात यहाँ बता रहे।
सातिशय अप्रमत गुणस्थान में सातिशय अप्रमत जब द्वितीयोपशम करता है,
सातिशय अप्रमत
द्वितीयोपशम करता है, पीछे अंतर्भूत पश्चात वो श्रेणी चढ़ता है, तो वो अंतर्भूत पे भी मरण नहीं है ना,
ऐसा कहीं लिखा नहीं है। ये कल भी आपने ये बात पूछी थी, द्वितीयोपशम करने के बाद हजारों बार छठा सातवा गुणस्थान होता रहता है तो वहाँ मरण होता है कि नहीं, ऐसा इनका प्रश्न है। तो कल ही यही बात इन्होंने कल भी पूछी थी, तो उसके बाद में ऐसे बारे में कहीं नहीं होता, ऐसा कहीं नियम नहीं लिखा है। आठवें के प्रथम भाग में जैसा नियम पूर्वक बताया है वैसा यहाँ कहीं नियम नहीं है। हाँ आगे अभी देखते हैं 570 पेज पर पहली लाइन। पेज नंबर 568 की फुटनोट देखना चाहते हैं। कसाय पाहुड़ का जो कथन जयधवला का उन्होंने लिखा है 568 पेज पर, यानी प्रथम ऑप्शन सम्यक तो होने के पहले क्या होता है उसकी बात यहाँ बता रहे। देखो सम्मत्त पढ़म लंबस अनंतरम पच्छदो यमिच्छत्तम, सम्मत यानी सम्यक्त्व, पढ़म यानी प्रथमोक्षम, प्रथमोक्षम सम्यक्त्व के लंबस यानी जो प्राप्ति होती है, अनंतरम पच्छदो, अनंतर पूर्व मिथ्यात्व होता है। लंबस अपड़मस्सदु भजिदैवो पच्छदो होदी। अपड़म यानी जो अप्रथम का अर्थ क्या है, जो प्रथम उपशम नहीं है यानी वेदक समय दुष्ट, उसके पूर्व में पच्छदो भजिदैवो, भजिदैवो यानी ऑप्शनल है, होगा भी नहीं भी होगा, ये कषाय पहुड़ में लिखा है। आगे लिखते हैं, सम्मतस्य जो पढ़म लंबो अनादियम इच्छा इट्ठी विषवो तस्य अनंतरम पच्छदो अनंतर पच्छम पश्चिमावत्थाए मिच्छतम एव होई। देखो यहाँ क्या लिखा है, जो अनादि का मिथ्या दृष्टि है उसके प्रथम उपशम के पूर्व में भी और बाद में भी नियम से मिथ्या तो होता है। पहली बार जो अनादि का जो पहली बार प्राप्त करता है उसके बारे में, दूसरी तीसरी असंख्यात बार होता है बाद में, ये नियम नहीं है, पहली बार वो मिथ्या तो नहीं जाता है। देखो जय धवला का रेफरेंस है,
ये फिर से जरा समझो
फिर से, हाँ, क्योंकि ये हमें अन्य अन्य ग्रंथों में तो मिला था, अमित गति आचार्य के श्रावकाचार में मिला था, लाठी संहिता में मिला था, अणगार में मिला था, ये जो क्योंकि पहली बार प्रथमोक्षम नहीं कह रहे, पहली बार जो सम्यक को प्राप्त करता है अनादि का मिथ्या दृष्टि, सम्यक को उपशम उपशमी सम्यक तो ही होगा तो गिरता ही है नियम, अंतर्मूत में से ही प्राप्त कर सकता है, ये गिरने का नियम। देखो 568 ये मैं हाँ प्राकृत का अर्थ मैं फिर से दोबारा बताती हूँ, ये जय धवला के रेफरेंस से बताएं। हाँ 568 पेज निकालो आप, उसकी फुटनोट हम बता रहे हैं, उसके बाद आपका प्रश्न पूछो। देखो ये सेकंड लाइन, सम्मतस्य जो पढ़म लंबो अनादियम इच्छा इट्ठी विषव, यानी अनादि मिथ्या दृष्टि के जो सर्वप्रथम प्रथमोक्षम सम्यक प्राप्त होता है तस्य अनंतरम पच्छदो अनंतरम पश्चिम अवस्थाए, अनंतर पूर्व और अनंतर पश्चिम अवस्था में, यानी उसके पूर्व भी और बाद में भी मिच्छत्तमेव होई, मिथ्यात्व ही होता है। तथ्य जाव, इसमें और खरखर आवाज आ रही है आपको, जो बिना आवाज का कर दे मिला, ये अर्थ समझ में आया आपको, पूर्व में भी और बाद में भी अनादि मिथ्या दृष्टि के। अनादि का यानी पहली बार प्रथम उपशम हो रहा है, और धवला में केवल वो पहले की बात है, अनंतर पच्छदो वाली बात की, और यहाँ पर दोनों की बात बताए, वो पहली बार प्रथम सम्यक तो कहने से वो प्रथम उपशम है, पर इन्होंने कंडीशन डाली अनादि मिथ्या दृष्टि की, यानी वो सबसे पहली बार हो रहा है ये नक्की हुआ, यानी पहले पूर्व में भी और पश्चात में भी नियम से मिथ्या तो है।
अनादि मिथ्या दृष्टि है वो चौथा गुणस्थान या सातवा गुणस्थान कोई भी गुणस्थान प्राप्त कर सकता है ना,
कोई भी ऐसा कोई जरूर नहीं, चौथा होगा पांचवा होगा या सातवा होगा,
और सातवा अंत में जाएगा तो भी नियम से अंतर्मूर्त में नीचे आ जाएगा,
सातवें से छठा सातवा करेगा,
हाँ।
उपशम सम्यक्त्व का काल पूरा होने पर नियम से नीचे तो नहीं आएगा, यहाँ गुणस्थान की कहाँ बात बताई,
नहीं इसे मैंने पूछ लिया,
अनादि का मिथ्या दृष्टि है और औपशमी सम्यक तो प्राप्त किया है, बस इतना ही, वो नियम से मिथ्या तो नहीं आएगा। तथ्य जाव, आगे पढ़ते हैं, देखो अंतर्मूर्त में वो तो नीचे आया, तो अंतर्मूर्त में सौक्षम प्राप्त कर सकता है, वो सादी मिथ्या दृष्टि हुआ है।
अच्छा।
अब जो अनादि का मिथ्या दृष्टि नहीं है, सादी मिथ्या दृष्टि है, और हम कहते लंबे काल के बाद वो भी प्रथम उपशम प्राप्त कर सकता है, क्योंकि उसने उद्वेलना कर दी थी, अब उसके मिथ्यात्व में आने का नियम नहीं है, परंतु मिथ्यात्व से ही उसको प्रथमोक्तम होगा, यानी वो पूर्व का मिथ्यात्व का नियम वहां पर भी लागू होगा पहले पूर्व में, क्योंकि प्रथमोक्तम सम्यक्त्व मिथ्या दृष्टि के ही प्राप्त होता है। और यह वो अनादि वाली कंडीशन जोड़ दी, उसके पहले भी और बाद में भी मिथ्यात्व, ये इस बात में वो धन कुमार ने कितना पत्रव्यवहार किया था ना, एक कोई था ना जयपुर का कोई, उसने बहुत पत्रव्यवहार किया था हमारे को रेफरेंस मांगे थे।
इसका अर्थ ये हो गया कि जो अनादि मिथ्या दृष्टि है वो प्रथमोपशम सम्यक तो प्राप्त करेगा, वो मिथ्यात्व में गिर जाएगा, फिर असंख्यात काल पर्यंत वो सादी मिथ्या दृष्टि कहला गया अनादि मिथ्या दृष्टि, या जब सादी मिथ्या दृष्टि कहला गया, यानी प्रथमोपशम सम्यक तो मिथ्यात्व भी करेगा और सादी मिथ्यात्व भी करेगा, ऐसा हो गया ना।
पहली बार प्रथम ऑप्शन होगा इसका, ऐसा प्रथम ऑप्शन समय तो असंख्यात बार हो सकता है, पहले के असंख्यात से भाग बार कभी प्राप्त किया फिर गया फिर घूमता रहा फिर कभी प्राप्त किया फिर मिथ्या तो नहीं गया, ऐसा हो सकता
है।
हाँ हाँ, ये कहते हैं किसी ने पहली बार समय को प्राप्त किया, प्रथम उपशम किया, मिथ्या तो नहीं गया, और अर्ध पुद्गल परावर्तन काल तक मिथ्या तो नहीं रहा, और फिर वो प्राप्त करेगा तभी वो सादी मिथ्या दृष्टि ही कहलाएगा, भले उसके सत्ता में मिथ्यात्व ही है अन्य दो प्रकृतियां नहीं है, तो फिर उसके लिए फिर गिरने की कंडीशन है, अनादि के लिए कंडीशन है। देखो नीचे फुटनोट तीसरी लाइन तथ्य जावत परमठिदी चरिम समोत्ति ताव मिच्छत्तोदयम मोत्तुन पयारंतरा संभवादो। क्या कहते हैं, जाव पढ़मठिदी चरिम समयोक्ति, यानी जो प्रथमोक्तम सम्यक को प्राप्त करता है तो पहले अंतर कर देता है, तो उसके नीचे प्रथम स्थिति होती है निषेकों की, ऊपर की द्वितीय स्थिति है, बीच में गैप है अंतर है, तो वो प्रथम स्थिति के अंतिम निषेक तक मिथ्यात्व का उदय है, यही कहते तत्व जाव पढ़मठिदी चरिम समयोक्ति, यानी अंतिम समय तक ताव मिच्छत्तोदयम मोत्तुन, यानी मिथ्यात्व का उदय छोड़कर पयारंतर संभवादो, अन्य कोई वहां पर संभव नहीं है, लंबस्य अपरमस्य दु, यानी समय को प्राप्त करने वाले के अपरम अप्रथम लिया जो खलु अपरमो सम्मत्त परिलंबो तस्य पच्छदो मिच्छत्तोदयो भजेयवो होइ। अपरम का अर्थ होता है वो वेदस्थान मुक्ति होता है, प्रथमोक्षम जो नहीं है वो उसके पूर्व मिथ्यात्व के उदय का कोई नियम नहीं है। अब अपरमो में क्या, जो प्रथमोक्षम सम्यक्त्व नहीं है उसका तो जो द्वितीयोक्षम हो सकता है, जो वेदक हो सकता है, जो क्षायिक हो सकता है, उसके पूर्व में चाय के पूर्व में समय प्रकृति का उदय था है ना, और द्वितीय ओक्षण के पूर्व में वो भी समय प्रकृति का उदय था। एक बार अभी जो औक्षणिक समय तो पूरा होने के बाद वेदक समय तो में आया, इसको किसी का भी उदय नहीं था तीनों प्रकृति में से, परंतु जो सादी मिथ्या दृष्टि है और जो वेदक समय को प्राप्त करता है उसके मिथ्यात्व का उदय था समय को होने के पहले। जो अप्रथम है, अप्रथम का अर्थ है जो प्रथमोक्तम समय दृष्टि नहीं है, जो प्रथमोक्तम नहीं वो क्या हो सकता है, द्वितीयोक्तम हो सकता है, वेदक हो सकता है, क्षायिक हो सकता है, उस समित्व के पूर्व में मिथ्यात्व का उदय भजनीय है, भजनीय अर्थ का
होगा
भी नहीं भी होगा। जो सारी मिथ्या दृष्टि मिथ्यात्व में से वेद समित्व प्राप्त करता है उसके उदय है, बाकी जीवन के नहीं है। हमें है ना ये क्या कहना चाहते हैं, फल है बस। अच्छा कि आपने फुट नोट पढ़ने को बोला, फल 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 फल। ये जो 568 पर जो फुट नोट है उसमें यही बात बताई। अभी कुछ आवाज आ रही है? नहीं आ रही। ठीक, ये हो गया। अभी अभी आगे बढ़ेंगे। इन्हें बहुत अच्छा रेफरेंस दिया ये अप्रू, यानी कौन सा पृष्ठ लिखा भी और लिखित पहले भी धवला के बारे में ऐसे अप्रू सम्मान
ऊपर से पांचवी लाइन में अनंतरम पच्चतो यम इच्छत्तम।
हाँ वो कषाय प्रभुता लिखा
भाई सिक्के पे
और ये जय धवला का
उसका रेफरेंस आ गया।
उसका रेफरेंस वो पहले फुट नोट में और उसकी सेकंड लाइन में जो है वो कषाय पाहुड़ का रेफरेंस था और ये जय धवला का रेफरेंस है। जय धवला के कषाय पाहुड़ और सूर्य सूत्र ग्रंथ के आधार पे लिखी है। फिर भी कषाय पाहुड़ में और इसमें भी कुछ अंतर बताया। आगे देखते हैं। 570 पर आए हैं पहली लाइन। जो द्वितीयोक्षण जीव वहां उत्पन्न होते, वहां अनुदिश अनुत्तर की बात कर रहे हैं, देवों में उत्पन्न हुए, वे नियम से वेदक सम्यक दृष्टि हो जाते हैं और वहाँ वेदक सम्यक दृष्टियों के द्वितीयोक्षण सम्यक्ति की प्राप्ति संभव नहीं। एक बार वेदक होने के बाद उसमें से द्वितीयोक्षण नहीं होते, वो तो मनुष्यों में सातवें गुणस्थान वाले करते हैं, क्योंकि इसकी प्राप्ति उक्षण श्रेणी के सम्मुख हुए मनुष्यों के ही होती है, ऐसा यहाँ समझना चाहिए। जो हमने मूल में पढ़ा था उसी का विशेषार्थ है। सम्यक्त्व आलाप के आगे ये कल किसका प्रश्न था ना, फूलचंद जी शास्त्री, वे इसके सह संपादक है स्वर्गीय फूलचंद जी शास्त्री। ये जो धवला जय धवला में उन्होंने संपादन किया है वो है, और आजकल का जो कोई नया उस लड़के का नाम है वो अलग है। हाँ मालूम है, वो तो उमराड़ा का है ना। अभी उस नाम का उसको फायदा हो रहा है और कुछ नहीं। देखो ये हो गया ना अपना सम्यक तो आलाप के आगे, कौन सा आलाप देखा है रेतन? अनुदिश अनुत्तरों के पर्याप्त का आलाप देखा है। संगीत आहारक साकार उपयोगी अनाकार उपयोगी होते हैं। अब उन्हीं अनुदिश और अनुत्तर विमान वासी देवों के अपर्याप्त काल संबंधी आलाप कहने पर एक अविरत सम्यक दृष्टि गुणस्थान, एक संगी अपर्याप्त जीव समाज, छहो अपर्याप्तिया, सात प्राण, चारों संज्ञाएं, देवगति, पंचेंद्रिय जाति, त्रस्काय, वैकृत मिश्र का योग और कारमान का योग, ये दो योग पुरुष वेद चारों कषाय आदि के तीन ज्ञान और संयम आदि के तीन दर्शन। अब द्रव्य से देखो कापोत और शुक्ल, भाव से उत्कृष्ट शुक्रलेशा या उत्कृष्ट शुक्रलेशा नहीं थी क्योंकि वो तो विग्रह गति वाली शुक्रलेशा है, फिर वहाँ पहुँचने पर कपोतलेशा है, और भाव से दोनों जगह उत्कृष्ट शुक्रलेशा भव्य सिद्धि है। औषमिक औषमिक लिया क्योंकि द्वितीयोक्षम वाले सायिक और सौषमिक के तीन समय संगीत आहारक अनाहारक साकार उपयोगी अनाकार उपयोगी होते हैं। इस प्रकार देव गति के आलाप समाप्त हुए। सिद्धि गति के आलाप सिद्धों के ओघ आलाप के समान जानना चाहिए। सिद्धों में पहले पहले हमने वो सिद्धों के ओघ आलाप देखे थे, तो सिद्धों के वो आलाप हमने सामान्य में हमने देखे थे सबसे पहले। देखो आपको बताएं क्योंकि अभी चारों गति होगी उसके बाद यहाँ सिद्धों की बात उन्होंने उठाई है। जहाँ सामान्य आलाप हुए थे पेज नंबर है 400 और शुरुआत में 1951 में वो साधारण बात थी उनको लेके हुई थी 451 पेज सिद्धों के आलाप। देखो अतीत गुणस्थान अतीत जीव समास अतीत पर्याप्ति अतीत प्राण क्षीण संज्ञा का सिद्ध गति अति अतीन्द्रिय अतीत काय अयोगी अपगत वेद क्षीण कषाय फिर केवल ज्ञान संयम में संयम भी नहीं असंयम भी नहीं संयमा संयम भी नहीं केवल दर्शन दर्शन में लेशा में अलेशा। अभी यहाँ भव्य नहीं कहना क्योंकि वो हो चुके तो भव्य और अभव्य से पार कहेंगे। सम्यक्तो में क्षायिक सम्यक्तो संगी और असंगी से रहित अनुभव का उसको अनाहारक है और साकार अनाकार दोनों उपयोग से उपयुक्त है। ऐसे टाइम ये सिद्धों के ओघालाप हमने देख लिए पेज 451 पर। अब आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार गति मार्गना समाप्त। देखो हमने पहले में पहले क्या किया सभी सभी जीवों में मिलकर 14 गुणस्थान होते हैं 14 जीव समय सब पूरा लिखा फिर एक एक गति में कितने गुणस्थान उसमें क्या क्या विशेषता है उसकी बात की। चार गति और सिद्धों पर गति हुआ। अब गति मार्गना अब इंद्रिय मार्गना अब इंद्रिय मार्गणा की अपेक्षा जितने भेद है उस पर लगाएंगे। अब देखो यहाँ पर इंद्रिय मार्गणा से भेद कितने पहले ये नक्की करो। हाँ बोलो पांच भेद एक इंद्रिय द्विंद्रिय तीनिंद्रिय चतुरिंद्रिय पंचिंद्रिय संगी असंगी सूक्ष्म उसका भेद नहीं। इंद्रिय मार्गणा से पांच भेद बताए फिर एक इंद्रिय जीवों में अगर भेद करना है तो वो बात नहीं करो। देखो 571 पृष्ठ पर अब देखो हमको एक इंद्रियों में लगाना है। पहले में पहले इंद्रिय मार्गणा के अनुवाद से आलाप मूल ओघालाप के समान जानना चाहिए। क्या कहना चाहते हैं इंद्रिय मार्गणा में जब हम इंद्रिय मार्गणा की अपेक्षा सभी जीवों को कंसीडर करेंगे तो गुणस्थान कितने हो गए
114
सब हो गए ना। पर इंद्रिय मार्गणा में अभी सिद्धों को इंक्लूड नहीं करना। गति मार्गना में तो भी सिद्धि गति कह दी उन्होंने और उन पर भी बता दी। अब यहाँ सिद्धों को लेना ही नहीं थी एक इंद्रिय से पंचेंद्रिय जीव 114 गुणस्थान वो अतीत गुणस्थान वालों को नहीं लेना है ख्याल में ये बात। तो देखो यही बात कह रहे विशेष बात यह है कि अतीत गुणस्थान अतीत जीव समास अतीत पर्याप्ति अतीत प्राण सिद्धि गति अनिंद्रिय अकाय संयम संयमा संयम और असंयम इन तीनों से रहित स्थान भव्य और अभव्य से रहित स्थान इतने आलाप नहीं कहना चाहिए। बाकी जो 13वें 14वें में जो गठित होते वो कहना क्योंकि वो भी जीव पंचेंद्रिय है पंचेंद्रिय जाति का उदय वहाँ तक है ना उनको पंचेंद्रिय कहेंगे क्योंकि सिद्ध जीवों के एकेंद्रियादि जाति नाम कर्म का उदय नहीं पाया जाता। यानी वो इंद्रिय मार्गणा में उनको हम इंक्लूड नहीं करें। वैसे गति नाम कर्म का भी उदय नहीं है, परंतु उनको सिद्धि गति कहते हैं, गति से रहित हो गए। अब सामान्य एक इंद्रिय जीवन के आलाप कहने पर सुनिवेन अभी आपको ट्राई करना है, उनका एक इंद्रियों का गुणस्थान कौन सा होगा ना? ये नक्की है। अब एक इंद्रियों में जीव समास हमको नक्की करना है। हमने जीव समास 14 देखे थे, आपको मालूम है 14 कौन से? एक इंद्रिय के कौन से भेद किए थे?
पर्याप्त,
और उसके पहले
सूक्ष्म और बाधक।
बहुत अच्छा, सूक्ष्म और बाधक, पर्याप्त रहा होता है, बाद में द्विंद्रिय वगैरह भेद। अब हमको एक इंद्रिय को देखना है, तो एक इंद्रियों में जीव समास कौन कौन से हो गए आप ही ने बताया। एक तो सूक्ष्म बादर, दोनों के पर्याप्त और अपर्याप्त, यानी सूक्ष्म पर्याप्त अपर्याप्त, बादर पर्याप्त अपर्याप्त, कितने हुए?
चार
हुए, है ना? ऐसा सोचना है। देखो यहाँ पर सामान्य एक इंद्रिय, सामान्य एक इंद्रियों में सभी आए, पर्याप्त भी अपर्याप्त भी सूक्ष्म भी बादर भी। जीवों के आलाप कहने पर एक मिथ्या दृष्टि गुणस्थान, बादर पर्याप्त बादर अपर्याप्त, सूक्ष्म पर्याप्त सूक्ष्म अपर्याप्त, ये चार जीव समान। अब पर्याप्त कितनी होगी, कौन सी नहीं होगी उनके? संगी को हमने 6 देखी थी, असंगी और धीरे तक 5 देखी थी। देखो कौन कौन सी पर्याप्त है, आहार पर्याप्त, शरीर पर्याप्त, इंद्रिय पर्याप्त, फिर श्वासोश्वास पर्याप्त, भाषा पर्याप्त और मन पर्याप्त। हाँ बहुत अच्छा, भाषा और मन नहीं है तो चार पर्याप्ति होगी और चार अपर्याप्ति भी होगी। पर्याप्त हो या अपर्याप्त हो उतनी तो चालू तो हो जाती है, उसकी पूरी होती है, उसकी नहीं पूरी होती, यही कह रहे हैं। देखो यहाँ क्या कहा, मन पर्याप्ति और भाषा पर्याप्ति के बिना चार पर्याप्तियाँ, चार अपर्याप्तियाँ, क्योंकि हम सामान्य देख रहे हैं, पर्याप्तों को भी देख रहे हैं अपर्याप्तों को भी एट ए टाइम देख रहे, बाद में उनके भेद करके बताएंगे। पर्याप्त काल में अभी प्राण कौन कौन से वो बता रहे, पर्याप्तों के कितने प्राण और अपर्याप्तों के कितने होते हैं? कौन सा नहीं है? चार से चार हमने देखे ना, तो यहाँ मन बल वचन बल तो होता ही नहीं है, इंद्रियों में से एक ही इंद्रिय प्राण है, एक इंद्रिय प्राण, एक काय बल प्राण, एक श्वास एक आयु, यही बता रहे थे। स्पर्शन इंद्रिय, काय बल, आयु और श्वासोश्वास, ये चार प्राण, हर एक के आगे प्राण प्राण शब्द लगाना। अपर्याप्त काल में श्वासोश्वास के बिना 3 प्राण, ये समझ में आई बात यहाँ पर? चारों संज्ञाएं, एक पहले से 6 तक तो चारों संज्ञाएं होती है। तीर्यंच गति, अभी गति में 3 गति है, एक इंद्रिय जाति, एक काय में 500 स्थावर काय कहने, पृथ्वी काय भूमि वो सबको इसमें इंक्लूड करना, तो काय के अपेक्षा 500 भेद इसमें गर्भित है। औदारिक कायोग, औदारिक मिश्र कायोग और कारमान का योग, ये 3 योग, क्योंकि ना यहाँ वचन और मन का कोई सवाल ही नहीं है। नपुसक वेद, देखो एक ही वेद होता है चतुर इंद्रियों तक, न पुसक रहे। चारों कषाय, कुमति और कुश्रुत, ये 2 अज्ञान, विभंग होने का सवाल नहीं है, वो संगी को होगा। असंयम और चक्षु दर्शन, क्योंकि एक कर्षण इंद्रिय है तो अचक्षु दर्शन पाया जाता। द्रव्य से 6 लेशा होती है, क्योंकि पृथ्वी और वनस्पति का एक जीवों के शरीर की अपेक्षा शरीर की 6 लेशाएं पाई जाती है, क्योंकि हमने सबको इंक्लूड किया। पृथ्वी में क्या सारे अलग अलग प्रकार के रत्न वगैरह होते हैं ना, अलग अलग रंग के, तो उनके अलग अलग पत्थर है उसके उसके अलग अलग वर्ण होते हैं, तो द्रव्य की लेशा अलग अलग होती है। वनस्पति काय को हमें भी देखते, कोई फूल है कोई पत्ते है कोई, कितने अलग अलग विविध रंगों के होते हैं, परंतु ये जो जल काय है वायु काय है उनमें सभी वर्ण नहीं पाएंगे, उनका अपना अपना जो है वो बताएंगे। भाव से, भावलेशा में 3 अशुभ होती है, कृष्ण नील और कापोट लेशाएं। भव्य सिद्धिक अभव्य, देखो इनमें भी भव्य जी है अभव्य भी जी कर रहे हैं, मिथ्यात्व है, असंगी कहेंगे, आहारक अनाहारक साकार उपयोगी अनाकार उपयोगी होते हैं। उन्हीं सामान्य एकेंद्रीय जीवों के पर्याप्त काल संबंधी आलाप कहने पर, तो मेरा प्रश्न है पर्याप्त काल में योग कौन सा होगा?
औदारिक का योग।
एक औदारिक का योग भी होगा, एक योग थ्रू आउट उनकी लाइफ जितनी है। हाँ, हमारे योग पलटते रहते हैं, द्विंद्रिय जो जो है उसके वचन योग भी है, का योग भी वो पलटेगा अंतर्मुत अंतर में। पंचेंद्रिय जीवों के तीन योग है, मन वचन काय, तो उनके वो तीनों पलटते रहेंगे। एक इंद्रियों में एक ही योग है, कौन सा? औदारिक का योग। तो पृथ्वी का एकों की तो 22,000 वर्ष की आयु है, तो पहले अंतर्मुर्त तक का औदारिक मिश्र और बाद में औदारिक का योग ही चलता रहेगा, इतना लंबे काल तक उनका चलेगा। तो देखो अभी हमको ये सामान्य एक इंद्रिय ने उसमें सूक्ष्म बादल दोनों लिए, परंतु उनमें पर्याप्त को लेना, पर्याप्त काल संबंधी आलाप कहने पर एक मिथ्या दृष्टिगुण स्थान बादर पर्याप्त और सूक्ष्म पर्याप्त दो जीव समाज, चार पर्याप्तियां, चार प्राण, चारों संज्ञाएं, ये तो हमने अभी देखी थी ना, पहले हमने पर्याप्त पर्याप्त दोनों को देखे थे। तीरियंश गति एक लिए जाती, पांचों स्थावर का औदारिक का योग, एक ही योग बता देखो, नपुसक वेद, चारों कषाय, कुमति और कुशरुद दो अज्ञान, असंयम, अचक्षु दर्शन, ये मात्र अचक्षु दर्शन है, एक इंद्रिय को भी, द्विंद्रिय को भी, तीन इंद्रिय को भी, चतुरिंद्रिय को क्या होगा? अकेला चक्षु दर्शन होगा कि अचक्षु भी होगा? हाँ, अचक्षु भी होगा, अचक्षु तो सबके है, अनादि से पार्वे के अंत तक अचक्षु दर्शन पाया जाएगा। द्रव्य से छह लेशाएं, अभी उन्होंने बताया था पर्याप्त जीव द्रव्य से छह लेशा बढ़ जाती है, क्योंकि वो पृथ्वी का एक भी ले या वनस्पति का एक को भी। भाव से कृष्ण नील और कापोत लेशाएं, भव्य सिद्धि का भव्य सिद्धि, मिथ्यात्व विसंगत की अपेक्षा मिथ्यात्व, असंगी आहार क्योंकि पर्याप्त है ना, साकार उपयोगी और अनाकार उपयोगी होते हैं, वहां पर भी ज्ञान दर्शन का कार्य चल रहा है कि रुक गया, लेकिन नियम में थोड़ा आराम मिलेगा ना। उन्हीं सामान्य एकेंद्रीय जीवों के अपर्याप्त काल संबंधी आलाप कहने पर प्रतिभा आप लगाएंगे बिना देखे? हाँ, आप वो टेबल का ऊपर का हेडिंग देख लो। हाँ, पहला मिथ्यात्व गुण स्थान, हाँ बहुत अच्छा, हाँ अपर्याप्त, चार अपर्याप्त के हैं, हाँ तीन प्राण, हाँ संज्ञा चार, गति, हाँ इंद्रिय, हाँ काय, योग नहीं कहना, काय देखो शटकर में, हाँ पांच साल का, बहुत अच्छा, योग अभी बताओ, और विग्रह गति में, कारमन का, तो दोनों को अपर्याप्त कहेंगे है ना, तो दो योग हो गए, नपुसक वे कषाय ज्ञान, बड़ा अच्छा संयम, असंयम दर्शन, अचक्षु लेशा, द्रव्य से अपर्याप्त के बता दो, विग्रह गति में शुक्ल, असंगी दोनों, विग्रह गति में अनाहार, फिर आहार अपर्याप्त में, तो औदारिक मिश्र है ना, परमाणु ले रहे हैं, साकार और अनाकार, यहाँ अनाकार शब्द है, निराकार का कोई बात नहीं है। अब यहाँ हम पढ़ेंगे तो नहीं लेकिन कुछ समझ में आती है बात के नहीं आती है। आपने तो जीव समझ बराबर बोल दिया है ना। हाँ उन्हीं सामान्य एकेंद्रीय जीवों के अपर्याप्त काल संबंधी आलाप कहने पर एक मिथ्या दृष्टिकोण स्थान अपर्याप्त भी बादर के भी लेना अपर्याप्त और सूक्ष्म के भी लेना बादर अपर्याप्त और सूक्ष्म अपर्याप्त दो जीव समान चार अपर्याप्तियां तीन प्राण चारों संज्ञाएं तिर्यंच गति एकेंद्रीय जाति पांचों स्थावर काय 572 पेज एक बात चल रही है नीचे का पैराग्राफ सामान्य एकेंद्रीय के अपर्याप्त अलग देखना है फिर उसमें मिला क्या आपको गुजराती में मिला। हाँ देखो एक मिथ्या दृष्टिकोण स्थान बादर अपर्याप्त और सूक्ष्म अपर्याप्त दो जीव समास चार अपर्याप्तियां तीन प्राण चारों संज्ञाएं तिर्यंच गति एकेंद्रीय जाति पांचों स्थावर काय औदारिक मिश्र का योग और कारमान का योग दो योग नपुसक वेद चारों कषाय कुमति और कुशरुद दो अज्ञान असंयम अचक्षु दर्शन द्रव्य से कापोत और शुक्ल लेशाएं भाव से कृष्ण नील और कापोतलेश है वो भी पलटते रहते हैं ना तीनों में से कोई एक होती रहती है। देखो इनका योग तो एक रहेगा परंतु लेशा ये पलटती रहेगी। भव्य सिद्धि का भव्य सिद्धि मिथ्यात्व असंगी आहारक अनाहारक साकार उपयोगी और अनाकार उपयोगी होते हैं ये अपर्याप्त के हो गए। अभी उसमें अब एकेंद्रीय के देखे हमने सामान्य पर्याप्त पर्याप्त अब एकेंद्रियों का भेद देखते हैं बादर एकेंद्रीय तो बादर एकेंद्रीय में कौन कौन से जीव समास होगी प्रेरणा दे दो जीव समास होगी बाकी तो कथन तो वैसा का वैसा चलेगा। अभी यहाँ पढ़ेंगे अभी हम 573 पृष्ठ पर बादर एकेंद्रीय जीवों के सामान्य आलाप कहने पर सामान्य कहने से पर्याप्त भी आ गए अपर्याप्त भी आ गए एक मिथ्या दृष्टि गुण स्थान अभी असंगी पंचेंद्रिय तक जीव सारे आगे आ जाएंगे तो सारे मिथ्या दृष्टि है संगी पंचेंद्रिय आएंगे तो हम कहेंगे पंचेंद्रिय जीव में कितने गुण स्थान होंगे बहुत अच्छा एक से चौदह क्योंकि पंचेंद्रिय कहने से सारे चारों गति के पंचेंद्रिय आ गए तो चारों गतियों में जो कोई विशेषता होती है सब बताएंगे आप। तो पंचेंद्रिय जीव में असंगी तक तो हम गति तीरेंद्र गति कहते हैं पंचेंद्रियों में क्या कहेंगे कौन सी गतियाँ होगी चारों गतियाँ होगी ना। हाँ अभी तक तो हम एक एक गति की बात कर रहे हैं एक इंद्रिय को एक तीरेंद्र गति कहेंगे तीसरे को कहेंगे इस तरह से। देखो अभी आगे देखो हमने देखा कहाँ तक आए गए थे हम दो जीव समाज देखे ना बादर पर्याप्त बादर अपर्याप्त चार पर्याप्तियाँ चार अपर्याप्तियाँ चार प्राण तीन प्राण दोनों को लेना है पर्याप्त को भी और अपर्याप्त को भी चारों संज्ञाएं तिर्यंच गति बादर एकेंद्रीय जाति एक्चुअली एकेंद्रीय जाति में बादर ऐसा नहीं कहता उन्होंने बता दिया एकेंद्रीय जाति कहना केवल पांचों स्थावर काय औदारिक का योग औदारिक मिश्र का योग और कारमान का योग क्योंकि पर्याप्त अपर्याप्तों को मिलकर कथन है नपुसक वेद चारों कषाय कुमति कुशरुत ये दो अज्ञान असंयम अचक्षु दर्शन द्रव्य से छो लेशाएं भाव से कृष्ण नीधर कापोत लेशाएं छो इसलिए कहे क्योंकि पर्याप्तों को भी इंक्लूड कर दिया भव्य सिद्धि का भव्य सिद्धि मिथ्यात्व असंगीत आहारक अनाहारक साकार उपयोगी और अनाकार उपयोगी होते हैं ये सामान्य अलग नीचे लिखे थे यहाँ लिखे थे आगे 574 पर आते हैं। उन्हीं बादर एकेंद्रीय जीवों के पर्याप्त काल संबंधी आलाप कहने पर अब इसमें डिफरेंस कहाँ होगा योग में होगा योग कौन सा होगा औदारिक कार्य है ना लेशा में क्या होगा? द्रव्य के स्वभाव से
तीन
अशुभ है, अपर्याप्त में फिर सोचना पड़ेगा। हाँ इतना यानी कहाँ डिफरेंस हो सकता है उसको हमको सोचना है पहले। हमारा आलाप नक्की हुआ, जीव समास नक्की कर देंगे, आगे की गाड़ी चलेगी। पर्याप्ति प्राण तो आसान है ना, हमको अभी मालूम हो गए कौन से जीव के कितने पर्याप्ति कितने प्राण होते हैं। अभी देखो यहाँ पे उन्हीं बादर एक जीवों के पर्याप्त काल संबंधी आलाप कहने पर, अब मैं सोनी बहन आपको एक एक बताऊंगी, आपको उसका उत्तर देना है। गुणस्थान कौन सा होगा? पहला गुणस्थान। जीव समास कौन सा है? अभी बादर जीव है और उसने पर्याप्त बता दिए, तो कौन सा जीव समास है? बादर एक पर्याप्त, एक ही जीव समास है। पर्याप्तियाँ कितनी होती है बादरों की? एक इंद्रियों की चार होती है। प्राण कितने होते हैं? चार होते हैं। संज्ञा चार, गति तीन इंद्रिय, अब जाति एक इंद्रिय जाति। काय में क्या लेना, षटकाय में से कितने काय हो गए इसमें? एक इंद्रिय जीवों को कौन सा काय कहते हैं? स्थावर काय। कितने प्रकार होते हैं? पांच। अभी तो पांचों को इंक्लूड करेंगे, अकेले पृथ्वी काय की रचना कहो कहेंगे तो वहाँ एक पृथ्वी काय कहना पड़ेगा। यह हमने एक इंद्रिय इतना ही नाम है इसका, वो काय मार्गणा में उसके भेद करेंगे। अभी तो सबको इंक्लूड करके एक ग्रुप में बता दिया एक इंद्रिय में। योग कौन सा होगा? औदारिक काय। बहुत अच्छा। वेद नपुंसक वेद। कषाय एक इंद्रिय को विचारो कषाय। ज्ञान बहुत अच्छी कुछ होता। संयम में कौन सा भेद होगा? असंयम। दर्शन में चक्षु है क्या? उदी दर्शन है क्या? केवल अचक्षु दर्शन। बहुत अच्छा। हाँ लेशा में द्रव्य से बहुत अच्छा शैलेशा। भाव से अरे सब अभी फटाफट उत्तर दे रहे हैं, देखो पहली बार अटेंड कर रही है और सबको अच्छा है। भव्य है क्या? भव्य है ये जी एक इंद्रिय दोनों है, और उसका सम्यक तो कौन सा है? मिथ्यात्व है। संगी है क्या? असंगी है। मन वाले के बिना मन असंगी है। बहुत अच्छा। पर्याप्त जीव है ना, तो आहारक है क्या अनाहारक है? आहारक ही है। और उपयोग कौन से हो गए दर्शन बना का दोनों। बहुत अच्छा, पूरे के उत्तर मार्क सही 100%। हम ट्राई नहीं करते तो हमको डर लगता है। हाँ हेलो, ट्राई नहीं किए अभी हम बादर एक उनके अपर्याप्त काल संबंधी ऊपर का पढ़ना बाकी है। हाँ, पढ़ेंगे। एक मिथ्या दृष्टि गुणस्थान, एक बादर पर्याप्त जीव समास, नहीं पर्याप्तों के इन्होंने बताए थे ना, अभी हम पढ़ेंगे इसमें से। चार पर्याप्तियां, चार प्राण, चारों संज्ञाएं, तिर्यंच गति, बादर एकेंद्रीय जाति, पांचों स्थावर काय, औदारिक काय योग, नपुसक वेद, चारों कषाय, कुमति और कुश्रुति ये दो अज्ञान, असंयम, अचक्षु दर्शन, द्रव्य से छह लेशाएं, भाव से कृष्ण नील और कापोत लेशाएं, भव्य सिद्धि और अभव्य सिद्धि दोनों पाए जाते हैं इसमें। मिथ्यात्व है, असंगी, आहारक, साकार उपयोगी और अनाकार उपयोगी होते हैं। अभी हम बादर एक जीवों के अपर्याप्त काल संबंधी आलाप कहने पर, ये इसमें जो करेक्शन था ना 187 नंबर का टेबल है ना, बादर एक जीवों के पर्याप्त आलाप, काय के नीचे पांच लिखा हुआ ही था मेरे ख्याल से, उन्होंने लिखा था। संगी के नीचे एक असंगी लिखना है, सं लिखा था वो असं करना, आपने किया हुआ है क्या? आपकी नई पुस्तक है ना, संगी के कॉलम में क्या लिखा है?
संगी लिखा
है। संगी के नीचे क्या लिखा
है?
नीचे टेबल में, ऊपर का टेबल 187 नंबर का टेबल, राइट से तीसरा कॉलम, राइट से तीसरा, संगी के नीचे क्या लिखा
है?
इधर से तीसरा, संगी के नीचे क्या लिखा है? उसके नीचे क्या लिखा है? एक असंगी लिखना चाहिए, एक असम, वो सम जैसा दिख रहा है, उसके ऊपर माथे पर एक आंकड़ा लिखो, एक, हाँ, और वो सम के बदले असम करो, स के पहले अ लिखो, असंगी, चल में, हाँ। अभी हम अपर्याप्तों के देखेंगे, आप लगाएंगे प्रतिबंध गुणस्थान, हाँ, जीव समास, बादर अपर्याप्त, पर्याप्तिया चार, अपर्याप्तिया हैं, प्राण तीन, संज्ञा गति, हाँ, जाति एक, केंद्रीय काय पांच, स्थावर काय, योग, हाँ हाँ, औदारिक मिश्र कारमान, न पुस्तक कषाय, हाँ, दोनों, हाँ, संयम, हाँ, दर्शन, लेशा, द्रव्य से दो, कौन से, हाँ, कपोत शुक्ल, भाव से तीन अशुक, बरोबर, भव्य दोनों, सम्यक्त्व, हाँ, संगी असंगी, हाँ, एकेंद्रिय असंगी, आहार दोनों और उपयोग दोनों। देखो अभी हम इसको पढ़ेंगे, उन्हीं बादर एकेंद्रिय जीवों के अपर्याप्त काल संबंधी आलाप कहने पर एक मिथ्या दृष्टि गुणस्थान, एक बादर अपर्याप्त जीव समास, चार अपर्याप्तिया, तीन प्राण, चारों संज्ञाएं, तीर्यंच गति, बादर एकेंद्रिय जाति, पांचों स्थावर काय, औदारिक मिश्र का योग और कारमान का योग। ये आगे के 575 पर फिर का योग लिखा है, डबल हुआ, वो नहीं चाहिए वहां पर, कारमान का योग और वो आगे फिर का योग लिखा है ना वहां पर, वो निकाल देना,
हाँ, का पहला,
हाँ, निकाला हुआ है, हाँ। ये दो योग, नपुसक वेद, चारों कषाय, कुमति और कुशरुत दो अज्ञान, असंयम, अचक्षु दर्शन, द्रव्य से कापोत और शुक्ल लेशाएं, भाव से कृष्ण नील और कापोत लेशाएं, भव्य सिद्धिक अभव्य सिद्धिक, मिथ्यात्व, असंगिक, आहारक अनाहारक, साकार उपयोगी और अनाकार उपयोगी होते हैं। इसी प्रकार से पर्याप्त नाम कर्म वाले, कर्म के उदय वाले बादर एकेंद्रिय पर्याप्तक जीवों के, वो निवृत्ति चाहिए, निवृत्ति लिखा है ना, पर्याप्त नाम कर्म के उदय वाले बादर एकेंद्रिय पर्याप्तक जीवों के सामान्य पर्याप्त और अपर्याप्त, ये तीन आलाप कहना चाहिए, वो निवृत्ति अपर्याप्त चाहिए। फिर से यानी कौन से जीव है, देखो पहले हमने एक इंद्रियों पर लगाए, एक इंद्रियों में सब इंक्लूड कर दिया, फिर एक इंद्रियों के पर्याप्त एक इंद्रिय और अपर्याप्त एक इंद्रिय बताए, फिर हमने देखा था बादर एक इंद्रिय, बादर एक इंद्रिय में भी पर्याप्त दिया है अपर्याप्त दिया है, अब हमारा क्राइटेरिया है बादर एक इंद्रिय पर्याप्त जीव है, बादर एक इंद्रिय पर्याप्त कहने से पर्याप्त नाम कर्म वाले, उसमें भी दो भेद लेना, निवृत्ति पर्याप्त और पर्याप्त, हाँ समझ में। पहला भेद हमने एक इंद्रिय का देखा, उसमें बादर और सूक्ष्म दो भेद देखे, बादर में भी बादर पर्याप्त और बादर अपर्याप्त, ये जो अपर्याप्त नाम कर्मों वाले अपर्याप्त होते वो अलग, और बादर पर्याप्त जीवों में भी हम पर्याप्त अपर्याप्त लगाएंगे, जो अभी देखा वैसे उनमें कथन होता है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं होता। यही कह रहे क्योंकि वो एक इंद्रिय के जो भेद है, इंद्रिय मार्गणा के ये आलाप है। जैसे हम गति मार्गणा में क्या देखा, सामान्य चीजें, पंचेंद्रिय चीजें, पंचेंद्रिय चीजें पर्याप्त, ऐसा ये इसका भेद है। पहले मार्गणा कौन सी है, एक इंद्रिय मार्गणा एक इंद्रिय, उसका भेद एक इंद्रिय बादर, फिर एक इंद्रिय बादर पर्याप्त, एक इंद्रिय बादर अपर्याप्त, वैसे सूक्ष्म एक इंद्रिय, सूक्ष्म एक इंद्रिय पर्याप्त, सूक्ष्म एक इंद्रिय अपर्याप्त, ऐसे उसके भेद करें। तो देखो इसी प्रकार से फिर ये वाक्य पढ़ते हैं, पर्याप्त नाम कर्मों के उदय वाले बादर एक इंद्रिय पर्याप्त जीवों के, ये यहाँ निवृत्ति नहीं चाहिए शब्द, वहां तो बादर एक इंद्रिय पर्याप्त जीवों के, ये उनके मार्गणा का नाम है। सामान्य पर्याप्त और अपर्याप्त ये तीन आलाप लेना चाहिए। ये ऊपर जो ब्रैकेट में निवृत्ति शब्द डाला था वो वहां नहीं चाहिए, आगे लिया क्योंकि वो अपर्याप्त कौन सा है वो बताना था, इसलिए वो निवृत्ति शब्द यहाँ डालना। इन जीवों के सामान्य पर्याप्त और अपर्याप्त, ये कौन सा अपर्याप्त है, तो निवृत्ति अपर्याप्त, ये तीन आलाप कहना चाहिए। अपर्याप्त नाम कर्म के उदय वाले बादर एक इंद्रिय लब्धि अपर्याप्त, इसलिए उसने लब्धि अपर्याप्त जोड़ दिया। जीवों के आलाप बादर एक इंद्रिय अपर्याप्त जीवों के आलापों के समान जानना चाहिए। इन अपर्याप्तों के आलाप पहले बताए थे, वही इनमें गठित होगा। अब सूक्ष्म एक इंद्रिय के सामान्य आलाप अश्विन में आपको बताना, पहला गुणस्थान जीव समाज, उसमें बोलो, उसमें बोलो
गुणस्थान नित्यत्व,
हाँ।
जीव समाज सूक्ष्म बादर, अरे सूक्ष्म पर्याप्त और सूक्ष्म अपर्याप्त,
बहुत अच्छा। पर्याप्ति,
पर्याप्ति चार और चार चार,
चार, चार,
हाँ। प्राण चार तीन,
चार और तीन, संज्ञा
चार,
हाँ।
गति तीरियन
इसमें मत देखो,
अच्छा मैं ऊपर
दिखाई, राइट साइड में देखो,
हाँ। इंद्रिय एक इंद्रिय,
एक इंद्रिय जाती का है,
का पांच सूक्ष्म, अरे पांच स्थावर,
पांच स्थावर, हाँ। योग
तीन योग, वेद नपुंसक वेद, कषाय चार,
ज्ञान
दो, ज्ञान
दो, ज्ञान संयम
का संयम,
दर्शन
अचक्षु दर्शन,
लेशा
लेशिया द्रव्य से छः, ये हम लोग सामान्य आलाप दे रहे थे ना, द्रव्य से छः और भाव से तीन, द्रव्य से
सूक्ष्म जीवों के पर्याप्त उनके कापोत ही होती है, ये मैंने भी अभी नहीं पढ़ा पर मुझे याद है पहले से पढ़ा हुआ। सूक्ष्म एक इंद्रियों के कापोत लेशा ही होती है, अभी देखना पर्याप्त उनका आलाप, यहाँ द्रव्य से दो बताए हैं, सामान्य आलाप में भी दो लिए हैं,
क्योंकि शुक्ल और कापोत दोनों हो जाएगी ना,
क्योंकि वो अपर्याप्त शुक्ल होगी, पर्याप्तों के तो कापोत ही होगी।
तो भाव से
सूक्ष्म जीव पर्याप्त हो या अपर्याप्त हो, सामान्य में आए हैं ना
शुक्ल और कापोत,
शुक्ल और कापोत हो गए, छह लेशा बता रहे थे वो नहीं करते,
द्रव्य से दो और भाव से तीन अशुभ लेश,
भव्य
भव्य दोनों,
सम्यक
मिथ्यात्व,
संगी
असंगी,
आरक
आरक अनारक दोनों,
दोनों
और उपयोग दोनों,
यही लेशा का मुझे बताना था। अब देखो पर्याप्त का आलाप देख लो, आगे का टेबल पर्याप्तों के, अकेले कापोत लेशा है, सूक्ष्म जीवों के एक कापोत लेशा ही है, ये नियम द्रव्य और भाव से तो तीन अशुभ है ही। अभी हम यहाँ से पढ़ेंगे देखो 575 पेज नीचे का पैराग्राफ, सूक्ष्म एकेंद्रिय जीवों के सामान्य आलाप कहने पर एक मिथ्या दृष्टि गुणस्थान, सूक्ष्म पर्याप्त सूक्ष्म अपर्याप्त दो जीव समास, चार पर्याप्तियां चार अपर्याप्तियां, चार प्राण तीन प्राण दोनों को लिया ना, चारों संज्ञाएं तिर्यंच गति एक इंद्रिय जाति, उसमें उन्होंने सूक्ष्म भी लिख दिया, पांचों स्थावर काय यानी त्रस्काय नहीं है स्थावर काय सभी, औदारिक कायोग औदारिक मिश्र कायोग और कारमान कायोग तीनों योग, नपुसक वेद चारों कषाय, कुमति और कुशृत ये दो अज्ञान, असंयम और चक्षु दर्शन द्रव्य से कापोत और शुक्ल लेशाय। अभी ख्याल में रहे ना, सूक्ष्म जीवों के कपोत लेशा पर्याप्त अवस्था में, भाव से कृष्ण नील और कापोत लेशाय, भव्य सिद्धिक अभव्य सिद्धिक, मिथ्यात्व असंगिक, आहारक अनाहारक, साकार उपयोगी और अनाकार उपयोगी होते हैं। अब अभी पर्याप्तों के आलाप कहने पर एक कपोत लेशा ही होगी, वो शुक्ल लेशा विग्रह गति की अपेक्षा बताई थी। अब यहाँ पर्याप्त जीव ले रहे हैं एक कपोत लेशा। देखो उन्हीं सूक्ष्म एकेंद्रिय जीवों के पर्याप्त काल संबंधी आलाप कहने पर एक मिथ्या दृष्टि गुण स्थान, एक सूक्ष्म पर्याप्त जीव समास, चार पर्याप्तियां, चार प्राण, चारों संज्ञाएं, दीर्यंच गति, सूक्ष्म एकेंद्रीय जाति, अकेले एकेंद्रीय जाति कहो तो भी चले, पांचों स्थावर काय, औदारिक कायोग, नपुसक वेद चारों कषाय, कुमति और कुशृत दो अज्ञान, असंयम अचक्षु दर्शन, द्रव्य से कापोत लेशा, भाव से कृष्ण नील और कापोत लेशा है। द्रव्य से अकेली कापोत लेशा ली है ना, भव्य सिद्धिक अभव्य सिद्धिक, मिथ्यात्व असंगिक, आहारक साकार उपयोगी अनाकार उपयोगी होते हैं। ये एकेंद्रीय जीवों की पर्याप्तों की आयु कितनी लंबी हो सकती है? अंतर में सूक्ष्म है ना, सूक्ष्म जीव है पर्याप्त हो या अपर्याप्त अंतर्मुख की आयु होती है। यानी सूक्ष्म में लगातार रहने का काल सूक्ष्म असंख्यात, अकेले सूक्ष्म पर्याप्त पर्याप्त पर्याप्त, मरकर पर्याप्त हुआ, फिर मरकर पर्याप्त, फिर मरकर पर्याप्त, फिर उसका काल अरे नहीं अंतर्मूर्त अपर्याप्त में भी अंतर्मूर्त पर्याप्त में भी अंतर्मूर्त, सूक्ष्म पर्याप्त सूक्ष्म पर्याप्त सूक्ष्म पर्याप्त अंतर्मूर्त से ज्यादा नहीं फिर अपर्याप्त नहीं आएगा, सूक्ष्म पर्याप्त अंतर्मूर्त से ज्यादा नहीं, परंतु कभी सूक्ष्म पर्याप्त कभी अपर्याप्त, तो असंख्यात लोक में जितने प्रदेश है उतने समयों तक वो रह सकता है, उसको असंख्यात लोक कहते हैं, वो बहुत बड़ा कार्य है। परंतु बादर का ऐसा नहीं है, वो आपको कर्म स्थिति याद आएगी वो बादर लिखेंगे, अभी हमारा ये काल का प्रकरण नहीं है, हमारी वो बीज प्ररूपणा लगानी है, नहीं तो जरा बीच बीच में दूसरा याद दिलाते हैं। अभी देखो उन्हें सूक्ष्म एकेंद्रीय जीवों के अपर्याप्त काल संबंधी आलाप देने पर, अपर्याप्त में क्या सोचना है, एक तो उनकी पर्याप्ति प्राण देखना है और योग कौन से हो गए अपर्याप्त में, कारमान और औदारिक मिश्र, और लेशा द्रव्य से दो हो जाएगी, भाव से तो तीन अशुभ होती है, पढ़ेंगे इसको। उन्हीं सूक्ष्म एकेंद्रीय जीवों के अपर्याप्त काल संबंधी आलाप कहने पर एक मिथ्या दृष्टि गुण स्थान, एक सूक्ष्म अपर्याप्त जीव समास, चार अपर्याप्तियां, तीन प्राण, चारों संज्ञाएं, तिर्यंच गति, सूक्ष्म एकेंद्रीय जाति, पांचों स्थावर काय, औदारिक मिश्र काय योग और कारमान काय योग दो योग, नपुसक वेद चारों कषाय, कुमति और कुशृत दो अज्ञान, असंयम अचक्षु दर्शन, द्रव्य से कापोत और शुक्ल लेशाएं, भाव से कृष्ण नील और कापोत लेशाएं, भव्य सिद्धिक अभव्य सिद्धिक, मिथ्यात्व असंगिक, आहारक अनाहारक, साकार उपयोगी और अनाकार उपयोगी होते हैं। ये सूक्ष्म के पर्याप्त देखे, सूक्ष्म के अपर्याप्त देखे। इसी प्रकार से पर्याप्त नाम कर्म के उदय वाले सूक्ष्म एकेंद्रिय पर्याप्तक जीवों के, ये निवृत्ति वहां नहीं चाहिए शब्द, वो नीचे की लाइन में चाहिए, और उसको निर्वृत्ति करना, वृ के ऊपर एक ऊपर रफार देना, निवृत्ति ने वो रिटायरमेंट और निर्वृत्ति ने वो तो रचना हो रही ना वहां पर, निर्वृत्ति जीवों के सेकंड लाइन पढ़ रही हूँ, सामान्य पर्याप्त और अपर्याप्त ये अपर्याप्त किस अपेक्षा से, निवृत्ति अपर्याप्त की अपेक्षा, ये तीन आलाप कहना चाहिए। अपर्याप्त नाम कर्म के उदय वाले सूक्ष्म एकेंद्रिय लब्धि अपर्याप्त कों के, वो निवृत्ति अपर्याप्त लब्धि अपर्याप्त कों के एक अपर्याप्त आलाप कहना चाहिए। जो अभी हमने सूक्ष्म एकेंद्रियों के अपर्याप्त आलाप है वही उनका भी कथन होगा। हाँ, अभी जो पढ़ रहे हैं ना वो लब्धि अपर्याप्त, फर्स्ट लाइन में है वो तो पर्याप्त नाम कर्म वाले। देखो देखो, सूक्ष्म एकेंद्रिय दो टाइप के हैं, पर्याप्त और अपर्याप्त। पर्याप्त का अर्थ क्या है, पर्याप्त नाम कर्म वाले पर्याप्त जीव। हाँ, तो उनमें जो सूक्ष्म पर्याप्त जीव है ना, सूक्ष्म में पर्याप्त, तो सूक्ष्म में पर्याप्त है वो पर्याप्त भी होते हैं अपर्याप्त भी होते हैं। उनके जो अपर्याप्त कौन से अपर्याप्त होते, निवृत्ति अपर्याप्त। और जो सूक्ष्म अपर्याप्त नाम का जो भेद देख रहे हैं वो कौन से अपर्याप्त है, लब्धि अपर्याप्त, क्योंकि उसका नाम है सूक्ष्म अपर्याप्त। वो लब्धि अपर्याप्त होंगे वो अपर्याप्त वाली बात है। और पहले हमने देखा था सूक्ष्म जीवों में जो अपर्याप्त भेद है, यहाँ पर जो 576 पर देखा था सूक्ष्म एकेंद्रिय जीवों के अपर्याप्त काल संबंधी आलाप, और अब यहाँ पर देख रहे हैं सूक्ष्म एकेंद्रिय लब्धि अपर्याप्त। लब्धि अपर्याप्त में अपर्याप्त ही होते वो ऊपर की लाइन में, उसमें दोनों बताए हैं वहीं पर पहली लाइन में। इसी प्रकार पर्याप्त नाम कर्म के उदय वाले सूक्ष्म एकेंद्रिय पर्याप्त जीव, पहले ऐसा कहो, वहां से निवृत्ति को हटा दो, और उसमें कैसे, वो है कौन से जीव, सूक्ष्म पर्याप्त, उसका नाम क्या है, सूक्ष्म पर्याप्त। तो सूक्ष्म पर्याप्तों में पर्याप्त भी भेद है और अपर्याप्त भी भेद है। वो अपर्याप्त कौन सा अपर्याप्त, निवृत्ति अपर्याप्त। सेम है जो लब्धि अपर्याप्तों के है या सूक्ष्म पर्याप्तों के, जो अपर्याप्त नाम करो अपर्याप्त का भेद है, आलाप सेम हो गए। हाँ, उनमें तीन आलाप है, सामान्य पर्याप्त और अपर्याप्त, और सूक्ष्म लब्धि अपर्याप्त कहूंगा एक अपर्याप्त ही आलाप है, उसमें फिर पर्याप्त वाला भेद नहीं लेना है।
वो जो निर्वृत्ति शब्द है ना,
वो सेकंड लाइन
लाइन में पर्याप्त और अपर्याप्त लिखा है, उस अपर्याप्त के पहले आना चाहिए, तो सब
ये द्विंद्रिय की बात कल पढ़ेंगे, पर वहाँ एक करेक्शन कर लेना। द्विंद्रिय में तीसरी लाइन राइट साइड में काय बल और वायु लिखा है ना, तो आयु चाहिए, लास्ट 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 काय बल और आयु, नीचे से तीसरी, ऊपर से तीसरी लाइन, ऊपर से तीसरी लाइन द्विंद्रिय में। हाँ, क्या लिखा है, वायु है क्या, आयु है, वायु है। ये नई कॉपी है, फिर भी वही वही मिस्टेक की है, ऐसा ही है। अभी उनको कितना कितना भेजा था सारा, अभी मराठी वाले उसका उपयोग कर रहे जो करेक्शंस भेजे थे, रेवती यूज कर रही सब। चलो अभी यहीं रुकेंगे हम, बाकी बात कल। जावानी के ज्ञान से तुझे लो।